आज हमने थोड़ा सा न्यारे होकर के देखा कि उनकी एक अपनी यात्रा रही है, उन्होंने कुछ अपनी लाइफ के सीन्स देखे हैं, कुछ उन्होंने शायद एजुकेशन उनको मिली नहीं थी।
सब लोग न्यारे नहीं हो सकते इतने आसानी से ना, न्यारे होकर कौन दिखता है, उसमें के लिए उसके लिए नॉलेज में आना जरूरी है
हाँ, लेकिन हम
जो
तो
हमें।
उस कर सकते हैं ना अभी। चलो सब लोग को छोड़ो, आज हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो किसके एम्पावरमेंट के लिए बैठे हैं?
फिर से श्रेया, न्यारे होकर देखने का क्या मतलब है?
न्यारे होकर के देखने का मतलब है कि आज तक हमारा ये बिलीफ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू राइट है
जी
तो वो सामने वाला तो गलत ही है। वो हमको डेफिनेट होता है कि अगर मैं राइट हूँ, मुझे लगता है कि अगर एजुकेटेड होना राइट है, तो उनको जो लगता है कि नहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो तो गलत ही है। पर थोड़ा सा डिटैच होकर के एक बार आपकी मदर की क्या जर्नी रही है और उस जर्नी के अकॉर्डिंग कैसे उनका ये पर्सपेक्टिव बना होगा, उनकी क्या एजुकेशन थी, उनकी क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसी लाइफ बिताई, उनका क्या अपब्रिंगिंग थी, कैसा उनका वातावरण था, क्या पॉसिबल है कि उस सब के कारण उनका ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया हो?
तो न्यारा बन के देखने का मतलब आप कह रही हैं कि थोड़ा डिटैच होकर देखना है।
हाँ, डिटैच होकर के देखना कि क्या वो भी राइट हो सकते हैं अपने नज़रिए से। आज तक तो मुझे लगता था कि अगर मैं सही हूँ तो वो तो गलत ही है ना। आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है? धीरे धीरे कितनी उस चीज़ के ऊपर बहस हो जाती है कई बार,
बहुत ज्यादा छोटी सी बहस इतनी बड़ी हो
और
जाती
हम
है।
उस चीज़ को सिद्ध करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम उसमें सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, इतना उसमें आवाज़ भी ऊँची हो जाती है, कितनी देर तक वो चलता रहता है, और कई बार वो सब पूरा होने के बाद आर्ग्यूमेंट बाहर का जीत भी जाते हैं। यू नो, आई फील लाइक आई हैव प्रूव्ड माई पॉइंट।
जी
इतना हम उसको प्रूव करने के चक्कर में वी स्पीक अ लॉट, एंड आफ्टर एवरीथिंग इज़ ओवर, हैव यू एवर फेल्ट वेरी ड्रेन्ड आउट?
यस, हमेशा, मतलब ऐसे बहुत ही कम आर्ग्यूमेंट्स कभी रहे होंगे मेरी ज़िंदगी में, टीवी के लाइफ में या घर की ज़िंदगी में, कि मैंने अपने को खुश महसूस पाया होगा। हमेशा ही ड्रेन्ड फील किया है, मतलब थका हुआ, आजिस हो जाना ना कि
थक जाते हैं ना,
हाँ,
बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना, और फिर कई बार ये भी लगता है
सिनिकल
कि
फील करते हैं कि क्या करें, मतलब एक निराशा सी होती है।
देखो इतना आर्ग्यूमेंट किया, बाहर देखने वाले को लग रहा है अरे क्या आपने बढ़िया, यू जस्ट प्रूव्ड अ पॉइंट। यू नो समटाइम्स पीपल विल टेल यू यू फॉट इट, आपने क्या वो बैटल की तरह, यू नेवर गेव देम अ चांस टू स्पीक। और वो और हमको उस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं कि फाइनली यू यू नो यू पुट अक्रॉस योर सेल्फ, आपने अपना पॉइंट प्रूव किया, आपने सिद्ध कर दिया। पर हमारी फीलिंग क्या हो रही है हर आर्ग्यूमेंट के बाद? थकान, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट, थका हुआ,
निराशा।
और फिर कभी कभी लगता है निकला क्या।
और एक मुझे तो लगता है कि मुझे लोगों पर से ही विश्वास उठ गया है, मतलब मैं मायूस हो जाती हूँ, कैसी दुनिया है, क्या लोग सोचते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एनीथिंग।
क्या लोग सोचते हैं, मतलब लोगों को वो सोचना चाहिए जो
मैं सोचती हूँ
मैं सोचती हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? आप वो सोचते हैं जो आपकी पर्सनालिटी है, वो सोचते हैं जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी एक जर्नी रही है ना। तो उनकी जर्नी में जो भी चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं, उस चीज़ ने उनकी पर्सनालिटी को शेप किया है, तो जो उनकी थिंकिंग होगी वो उसके अनुसार होगी। हम दोनों की थिंकिंग सेम हो ही नहीं सकती है। मदर फादर की थिंकिंग सेम होती है?
नहीं।
उनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो
जी
जाता है,
जी बिल्कुल।
क्योंकि वो दोनों आज एक किसी दूसरे घर से इधर आएंगी तो वो इनके जैसे तो नहीं हो सकते ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। वहाँ पर वो कैसे खाना बनाते थे, सिंपल चीज़ों में ही आर्ग्यूमेंट हो
पर
जाता
ऐसे
है।
बहुत से होते हैं, हमने कपल्स को देखा है, जैसे माता पिता का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिनके घर में कम लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे ज़्यादा होती हैं, उसकी क्या वजह है? कहते हैं कि उनकी किस्मत थी कि अच्छे से रहना।
दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जिसके साथ हमारा वो रिश्ता है, हो सकता है अगर हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, पॉसिबिलिटी है कि हमारे में सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस कम हैं संस्कारों में। एक कारण ये हो सकता है। नाउ दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। और वो ये भी हो सकता है कि घर में दो जनों के बीच में हो सकता है, अब सबके साथ तो नहीं हो सकता ना। चलो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट कम होता है, पर उस हस्बैंड ने फिर जॉब पर भी तो जाना है, वहाँ पर बॉस होगा, फिर उसने कहीं और भी जाना है, कोई उसका सबॉर्डिनेट होगा, कोई उसका फ्रेंड होगा, तो कितने सारे लोगों से मिलना है। अब जो मेरे से थोड़े से सिमिलर हैं उनके साथ तो इजी हो जाता है। इसलिए हमको सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा लगता है, कौन से रिश्ते में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं,
कोई हमारा दोस्त हो
क्योंकि
जिसके साथ
वो
हम
हम
शेयर करते हैं,
खुद चुनते हैं, वो हम खुद
बल्कि
चुनते
जितनी
हैं।
भी दिक्कतें होती हैं या इश्यूज होते हैं दिन भर के, तो उस फ्रेंड को बता देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं। आज के दौर पे मैं तो यही करती हूँ, और उसी को जो पुरानी फ्रेंड है कोई एक या कोई, उसको सब बताते हैं सारी बातें कि
सारी
ये
बातें
हुआ।
बता देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, और वो सारी बातें बता करके, वो सुन करके क्या कहते हैं, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, रिलैक्स।
वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आप गलत हो, वो आपकी सारी बात सुनते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, कहते कोई बात नहीं,
सब ठीक हो जाएगा,
सब ठीक हो जाएगा,
ठंड रख।
ठंड। पर हम सारा जीवन तो फ्रेंड के साथ नहीं बिता सकते, दैट्स वन रिलेशनशिप वी कैन चूज, देयर आर सो मेनी अदर रिलेशनशिप जो हम कहें कि उसमें हमारी चॉइस नहीं होगी, पर हम उनको छोड़ भी नहीं सकते।
सही बात है।
कितनों को छोड़ेंगे, आज जब हम एक नहीं ठीक रख पाते तो हम कई बार छोड़ भी देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन रिश्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैन आई एक्सेप्ट उनका पर्सपेक्टिव,
ये मुश्किल काम है,
क्या
किसी
मुश्किल है
और
इसमें,
के नजरिए को समझना और
समझना,
एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना
स्वीकार करना,
मुश्किल काम है
क्या मुश्किल है।
उसमें, क्योंकि एक जाहिर सी बात है वो आपके नज़रिए की तरह नहीं है। आप दोनों में इसी को लेकर तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसी बात पर तो विवाद
पर
है।
लड़ाई तो इस बात की है ना कि मैं सही हूं और आप गलत हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके नज़रिए पर आपको चलना है,
जी
इसका ये मतलब नहीं। आपने कहा कि नहीं एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, एजुकेशन होनी चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको अगर लगता है कि नहीं होनी चाहिए, या इतनी आवश्यक नहीं है, या नहीं भी होगा तो चल सकेगा, हाँ ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट होंगे, आई एक्सेप्ट देम बट आई डोंट अग्री विद देम।
इस सिस्टर पर हम फिर भी ये पूछना चाहेंगे कि अगर एक आर्गुमेंट में दो लोग हैं, हम दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर बहस हुई, बहस बहुत बढ़ गई, है ना, तो हम नहीं अग्री कर रहे हैं आपकी बात से, खैर आपका अलग एग्जाम्पल है क्योंकि आप नॉलेज में हैं और न्यारे मन से आप सबको देखती हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, और हमारी बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी मामला बढ़ गया, मैं अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ, आप अड़े हुए हैं, तो एक आर्गुमेंट में दो लोगों के बीच में जो हो रहा हो उसमें दोनों लोग सही कैसे हो सकते हैं, कोई एक तो सही होगा।
यही तो हमारा बिलीफ है कि
हाँ,
दोनों लोग सही कैसे हो सकते हैं।
तो दो लोग सही हो सकते हैं अपने अपने नज़रिए से, तो वो सही है, लेकिन दूसरा इंसान कैसे माने।
दूसरे इंसान को इतना ही तो मानना है कि ये जो राइट है, ये मेरे नज़रिए से भले मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर उसके नज़रिए से वो चीज़ बिल्कुल राइट
सही है,
है।
वो राइट है उसके हिसाब से।
कोई भी चीज़ आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में बॉर्न ब्रॉटअप हुआ है, आप कानपुर से बिलोंग करते
जी
हैं,
जी
आप कानपुर से आए हैं, आप कानपुर में रहते हैं, वहाँ का कोई तरीका है, वहाँ का एक खाने पीने का स्टाइल है,
जी
वो है। अब आप कानपुर से शिफ्ट होकर के दिल्ली में आ जाते हैं या बॉम्बे में आ जाते हैं, तो वहाँ का जो स्टाइल होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा,
अलग होगा।
अलग होगा कि नहीं, आप जो खाते थे, जिस तरह से खाते थे, या जिस तरह से आपकी लाइफस्टाइल थी, और जो एक दूसरी सिटी की लाइफस्टाइल या खाना है, वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा। पहनना ही देख लो, पहनना ही हम सोचते
पहनावा।
हैं कि हम इस तरह से तैयार होते हैं, कहीं को होता है कि नहीं हमको सलवार कमीज पहननी है या कुछ भी, वो उनका एक पर्सपेक्टिव है, दूसरा कहीं और ब्रॉन एंड बॉटअप हुआ है, उसका जो पहनने का तरीका है, खाने का तरीका है, वो हमारे से थोड़ा सा अलग है। अब हमारा जो एक तरीका होता है पहनने का, वो हमको सही लगता है, और दूसरे को देख करके हम कहते हैं
हाँ, मतलब लगता है कि क्या पहना है
ये
उन्होंने।
क्या पहना है, ये कोई तरीका है, ऐसे कोई तैयार होता है, ऐसे कोई, ये कोई ना तहजीब है या तमीज़ है, ऐसे हम, तो मुझे जो सही लगता है और अगर वो किसी और में नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको कॉन्स्टेंटली क्या करते जाते हैं,
क्रिटिसाइज करते हैं,
पहले तो रिजेक्ट करते हैं,
रिजेक्ट करते हैं, गलत ठहरा देते हैं
गलत ठहरा
उसको,
देते
हम
हैं,
गलत करार कर देते हैं, ये गलत है भैया, ये हमारा तरीका सही है,
हमारा तरीका सही है, हमारा सही है, उनका गलत
हमारा खाना
है,
पीना, हमारा पहनावा, हमारी सोच अलग है और वो सही है।
हमारी हमारी जो एक सोच है या जो एक आइडिया है या जो एक लाइफस्टाइल है उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, और उस अटैचमेंट इतनी ज़्यादा वो होती है कि अगर उसके खिलाफ भी अगर कोई बोलता है तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में चले जाते हैं, या तो जो वो मेरे बारे में अगर कुछ बोलता है तो हम तुरंत उसके बारे में फटाफट उसको अटैक करने लगते हैं
जी
कि आपका ऐसा है, आपका ऐसा है, आपका ऐसा है, और या हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिफेंड करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं यही बेस्ट है, यही राइट है, तो या तो अटैक करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में डिफेंसिव हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम दो जो हैं वो अलग हैं, हम डिफरेंट हैं, ये राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है, दो जने एक जैसे हो ही नहीं सकते, उनको एक जैसा खाना पसंद आए, एक जैसा लाइफस्टाइल पसंद आए, एक जैसी ड्रेस पसंद आए, उन दोनों के एक जैसे आइडिया हो, उन दोनों के एक जैसे ओपिनियन हो, ऐसा नहीं हो
एक जैसे
सकता है,
रिएक्शन हो किसी बात को लेकर,
एक जैसे
रिस्पॉन्स हो। जी
वो डिफरेंट होना ही है, और वो जो डिफरेंस है वो नेचुरल है।
यानी कि हम लोग एक तरह से इस बात को समझें और अपने मन को समझाएं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान सही हो सकता है। दो दिन दो लोगों में विवाद हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोनों अपने अपने नज़रिए से, अपनी अपनी जगह, दोनों ही सही हैं।
ज़रूरी नहीं, यही हकीकत है,
एक
एक एक ये हो सकता
है कि है, दोनों
है,
है,
एक एक की प्रोबेबिलिटी है कि शायद
आर्ग्यूमेंट
ये
ही खत्म हो
भी
जाएगा। लेकिन सिस्टर श्रेया, जैसे क्या पहले कह रही थी कि मैथ्स मीडिया का भी असर है, हम लोग देखते हैं रिश्तों में क्या हो रहा है, फिल्मों में देखते हैं कितना वायलेंस देखते हैं, वो उसके उसका भी असर पड़ता है। फिर जैसे न्यूज़ की दुनिया है पूरी, या सीरियल्स की दुनिया है, उसमें लगातार हमें नेगेटिव इमोशंस का इंटरप्ले देख रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ता है हमारी सोच पर। और हम लोग के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो देख देख कर भी होते हैं कि भाई उसका तो देखो कैसा रिश्ता है उन दोनों का, और हमारे हस्बैंड तो ऐसा नहीं करते हमारे साथ, कितना अच्छा देखो इनका भाई है, देखो हमारा कैसा, सुन सुन के औरों से। तो औरों का भी असर पड़ता है कि हमारे दिमाग में क्या आइडियल है और वो रियलिटी में तो ऐसी है नहीं, जो हम दुनिया से सुनते हैं या देखते हैं टीवी पर या फिल्मों में, वो हमारी रियलिटी से बहुत अलग होता है, तो उसका भी हमारे पर असर पड़ता है।
हम कोई चीज़ देख लेते हैं और यहाँ पर एक इमेज देख लेते हैं, पहले वहाँ देखी, फिर यहाँ देखी, अब फिर उसके साथ अटैच हो गए, और अब एक्सपेक्ट करने लगे कि वो ऐसा ही तो निकलेगा मेरा जो कंपेनियन होगा, मैंने वहाँ पर देखा और मैंने देखा अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हेल्पिंग होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, कंपैशनेट होगा, एक बहुत आइडल परफेक्ट पिक्चर यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली। ऐसे तो हम करते नहीं, हम तो कई बार लिस्ट भी बना लेते हैं
जी
कि जो मुझे फ्यूचर में चाहिए कंपेनियन वो ऐसा 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 होना चाहिए,
बिल्कुल बिल्कुल
एक दूसरे से पूछते भी हैं कैसा होगा, कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, अब वो पिक्चर बना ली और उस पिक्चर के साथ अटैच हो गए,
जी
हो गए,
जी
थोड़ा अंदर में डर भी लगता है कि जैसा हमने सोचा है वैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
जी
एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फियर भी
जी
होता है, पर जब वो रियलिटी होती है तो वो जो यहाँ की इमेज है और वहाँ की इमेज है वो थोड़ी सी
अलग होती है,
अलग होती है,
बिल्कुल
गलत नहीं होती है।
अलग है, गलत नहीं है,
देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस
बहुत
है,
फर्क है,
आपने जो यहाँ पर
वो
देखी
अलग
थी
है, वो गलत नहीं है।
वो अपने नज़रिए से
अगर
बिल्कुल
हम
ठीक
अलग को
है,
अलग ही समझें, गलत ना बना दें, तो
तो खत्म, तो कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म।
कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है। नहीं, आप सिस्टर श्रेया जो आप बात कह रही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मैच मेकिंग करती है, मैट्रिमोनियल्स का काम करती है, तो वो बता रही थी मुझे कि जितने भी रिश्ते आते हैं जो लड़के की तरफ से, जब वो बात करती है तो उनके दिमाग में हो रहा होता है, गाना चल रहे होते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर ऐसी इंगेजमेंट होती है, फिर जब शादी हो जाती है तो वो गाना बनना चलना बंद हो जाता है। अच्छा, लड़की के दिमाग में चल रहा होता है, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है। तो हम लोग इतने ख्याली पुलाव बना लेते हैं ना, और असलियत कुछ और होती है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो स्वाभाविक है, वो
असलियत
गाने चलते रहते हैं हमारे।
जी, क्योंकि केवल क्या है, असलियत तो जो है वही है, पर हमने उस असलियत को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। एक एक्सपेक्ट कर लिया था ना पहले से ही, फ्यूचर तो आया नहीं था अभी, वो तो अभी बहुत दूर था, फ्यूचर तो जो था वही था,
वही था, लेकिन
उसमें कुछ
हमने
हमने फ्लो
बहुत
नहीं किया,
एक्सपेक्टेशन कर लिया था इस रिलेशनशिप से।
हम तो फ्लो ही नहीं
तो फिर
करते लाइफ
कैसे
के साथ।
कैसे करें जब रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं, क्या वो संभल सकते हैं? अब देखिए, अगर एक मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत से लोग अलग हो भी जाते हैं, या दो भाइयों में बहुत रंजिश रही हो, या दो बहनों में, तो क्या उनको ठीक करना भी मुमकिन है? अब तो जैसे न्यारे मन से हम देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि मैंने इतनी चीज़ों को लेकर इतनी लड़ाइयाँ की, अपनी बहन को गलत बनाया, उन्होंने मुझे गलत बनाया, तो अगर किस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं, मतलब किसी तरह से क्या वो मरहम लगाना होगा, या उनको सिर्फ अपने को ही समझाना होगा कि वो गलत नहीं थे, सिर्फ अलग थे।
सबसे बड़ा मरहम किसी के लिए भी ये होता है कि वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करें। ये बहुत बड़ा मरहम है हर व्यक्ति।
अरे किसी इंसान की बुरी अगर आदतें हों, जो बुरी तरह से अपनी बीवी को ट्रीट करता हो, ज़्यादा है तो पीने की आदत हो या फिर मारपीट करने की आदत हो, उसे कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है सिस्टर?
कैसे
और ये
एक्सेप्ट
भी
कर सकता
रियलिटी
है,
है,
ये रियलिटी है।
बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो महसूस करती हैं, उनको ये इस चीज़ का पेन है।
एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके सारे एक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति है और उसकी कुछ आदतें हैं, उसमें से उसकी एक आदत है वायलेंस। वो आदत उसकी राइट नहीं है, हम आदत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये
जी
नहीं कह रहे हैं कि ये जो उसका एक्शन है वो राइट है,
जी
लेकिन हम सिर्फ किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस बीइंग को, उस एनर्जी को। आपको उसका ये एक्शन चेंज करना है ना, आपको उसकी ये जो आदत है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो और क्वालिटीज़ भी होंगी। ये उसका जिसके भी आप बात कर रहे हैं, जो भी है, जो वो थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, या उसका हाथ उठ जाता है, या उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, ये उसका एक संस्कार है, एक हैबिट है, उसके अंदर कुछ तो और क्वालिटीज़ होंगी, है कि नहीं है। एक वो बींग है जिसको गांधी जी भी बहुत सुंदर भाषा में कहते
हेट
थे,
द सिन बट नॉट द सिनर।
हेट द सिन नॉट द सिनर।
मैं वही सोच रही थी और आपने बात कही यही।
सिन को नहीं हम एक्सेप्ट करने की बात
हाँ
कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके सिन को चेंज करना है, जो उसकी वो आदत है, जो उसका एक्शन है, इसलिए तो वो लोग इतने महान होकर के गए। गांधी जी नहीं, आप अगर मंडेला की भी देखें तो
जी
27 ईयर्स के बाद ही केम आउट ऑफ प्रिजन,
जी जी
एंड एवरीबडी आस्क देम, डोंट यू हेट दोज पीपल जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? उसने बहुत रॉयली कहा, नहीं, आई डोंट हेट देम, आई हेट देयर पॉलिसीज। कितना दोनों में फर्क है, कि मुझे उस व्यक्ति से नफरत है, कि उस व्यक्ति के एक संस्कार से, एक आदत से नफरत है। जब हम बात करते हैं कि हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे से उसको एनर्जी कौन सी जाती है? एक है कि मेरे से उसको एनर्जी हेट्रेड की जा सकती है, रिजेक्शन की जा सकती है, और एक है कि मेरे से उससे एनर्जी कंपैशन की जा सकती है, एक्सेप्टेंस की जा सकती है। ये मरहम है, और ये जब मरहम उसको मिलता है
जी
तो उसके अंदर एक ताकत आती है, और वो ताकत उसको वो वाला सिन, वो वाला संस्कार भी चेंज करने की पावर उसके अंदर आ जाती है।
बिल्कुल सिस्टर श्रेया। और मुझे याद आ रही है एक ऐसी स्टोरी, एक पार्टीशन के बाद की ये बात है। एक बच्चे ने देखा था अपने माँ बाप को बाकायदा मरते हुए, किसी ने उनका उनका खून कर दिया था। तो वो इंडिया आया और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई उसने की है, किसी रिश्तेदारों के साथ रहा। तो जब उसने हिस्ट्री चूज़ की, और बार बार ये बातें होती थी पार्टीशन के मारकाट के वक्त की, जो ज़ख्म की बात होती थी, तो वो उसके दोस्तों ने पूछा कि तुमने तो अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, और तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें नफ़रत नहीं होती उन लोगों से जिन्होंने किया है? वो उसने कहा, मुझे नफ़रत उन लोगों से नहीं है, उस हिंसक सोच से है जिसकी हिंसा का शिकार मेरे माता पिता हुए। तो बहुत
कितनी
ही
गहरी
आपने,
बात है ये,
बहुत गहरी बात है,
कितनी
मुझे बहुत इसका असर पड़ा। मतलब मैं सोच भी रही हूँ तो मैं महसूस कर सकती हूँ आपकी बात के बाद कि हम लोग कितने आसानी से किसी को बुरा
अब
बना
उस
देते हैं।
सोच में नफरत ही होगी, जो उन्होंने यहाँ तक कि उस छोटे बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को मारा, तो वो सोच के अंदर कितनी नफरत होगी कि इस लेवल तक वो आ गए कि वो मार भी सके। अब इस बच्चे के पास एक ऑप्शन है, वो भी नफरत कर सकता है
उसी उसको आगे बढ़ा सकता है उसी नफरत की आग को।
नफरत ने उसके पेरेंट्स की जान ली, वो भी उस नफरत को पकड़ करके उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, या वो ये सोच सकता है कि नफरत करने से तो मेरे पेरेंट्स वापस आ नहीं सकते हैं, नफरत ही तो मेरे पेरेंट्स को लेकर गए हैं, यही नफरत और किसी के पेरेंट्स को न लेकर के जाए तो मुझे इस नफरत को रहम में बदलना है।
नफरत से रहम, बहुत बड़ा शिफ्ट बिना नफरत किए हुए।
अभी
नफरत और हिंसा की जो ये एक कड़ी है उसको तोड़ना,
क्योंकि उससे
श्रेया
वापस तो आ नहीं सकते ना।
बहुत ही, आप जो न्यारे मन की जो आपने बात की और जो पूरा ज्ञान का जो सागर है, जिस नॉलेज में आप हैं, आप शेयर कर रही हैं, ये वाकई में ये जो अपने आप में जो नॉलेज के जो ये बूंद, ज्ञान के जो बूंद बिखेर रही हैं आप, इससे सच में सुकून भी मिलता है। और मुझे लगता है कि सबको इस तरह की हीलिंग टच, इस नर्म टच की ज़रूरत है, इस मरहम की ज़रूरत है।
क्योंकि कई बार
तो
हमको
ज्ञान
पता
अपने
ही
आप में
नहीं
मरहम का
होता,
काम करता है।
ज्ञान अपने आप में मरहम का काम करता है। इसलिए कई बार कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज लाइट
और
भी है लेकिन पावर भी है। क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, कई बार जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं हमको पता भी नहीं होता है, हम वही देखते हैं और उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कोई दूसरा रास्ता भी है, कुछ डिफरेंट भी है, वो रियलाइजेशन नहीं होती है। तो नॉलेज कई बार हमको रियलाइजेशन देती है कि देर इज अ डिफरेंट रोड, आई हैव अनदर ऑप्शन, एक दूसरा तरीका
तरीका
है।
है सिस्टर। इसी इसी संदर्भ में ऐसा क्या है वो ज्ञान जिसका जिसका मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के ज़रिए भी होता है, जो हम अब इस वक्त कर सकते हैं और हमारे सारे दर्शक इससे सीख सकते हैं, जिससे हमारे मन में जो नफरत की भावना तब्दील हो करुणा में, रहम से। आप हमें बताइए।
2 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। कुछ पलों के लिए उन सबको मन की स्क्रीन पर लेकर आए जिनके साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या जिनसे हमें थोड़ी सी नफरत भी हो गई है। आज डिटैच होकर उनके पर्सपेक्टिव को देखें, हमारी तरह वो भी एक लंबी जर्नी पर थे, उनके चैलेंजेस के अनुसार उनकी पर्सनालिटी बनी। हम अपने नजरिए से राइट हैं, वो अपने नजरिए से है। आज इस पल उनको रिजेक्ट करने के बजाय दिल से एक्सेप्ट करें, आप भी ठीक थे, यू आर ऑल्सो राइट। वो बहुत ही प्योर एनर्जी उन तक पहुंच रही है, रिजेक्शन की नहीं, नफरत की नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की। और इस पल में मेरे साथ साथ वो भी हील होते जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक आत्मीयता महसूस कर रही हूँ उन सब रिश्तों में जो नफ़रत के धागे से मैंने बांध के रखे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर श्रेया, मुझे सच में एक सुकून का एहसास हो रहा है और मुझे लगता है इस नॉलेज को हमें और बांटना की ज़रूरत है। और आगे ले जाने की जरूरत है। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.